इशिका को केशव सिंघानिया के अपने पिता होने की सच्चाई का पता चल चुका था। केशव के गुस्सैल स्वभाव के चलते उसे डर लग रहा था कि वो इशिका और राधिका को अलग ना कर दे। इस मामले में अभिमन्यु से बात करने के लिए वो राजवंश एम्पायर जा रही थी। इस वक्त राजवंश एम्पायर में अभिमन्यु पृथ्वी के साथ था। उनके सामने कुछ पेपर्स रखे हुए थे जो मिस्टर सिंघानिया ने भिजवाए थे। उन पेपर्स के जरिए उन्हें भी पता चल चुका था कि केशव और इशिका के बीच क्या रिश्ता है। अभिमन्यु और पृथ्वी बात कर ही रहे हैं कि तभी वहां पर इशिका पहुंची। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। उसे देखकर अभिमन्यु जल्दी से उठकर उसके पास आया और उसे दोनों हाथों से पकड़कर गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? इन्फ्यूजन में अभी टाइम है, फिर भी तुम इतनी वीक और परेशान क्यों लग रही हो? क्योंकि बात ही ऐसी है। इशिका ने जवाब दिया, बात कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं रहना है, मैं सब संभालने के लिए हूँ। चलो आओ बैठो और रिलैक्स करो, उसके बाद बात करेंगे। अभिमन्यु ने उसे प्यार से सहारा दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठा दिया। आप लोग बात कीजिए, मैं कॉपी भिजवाता हूँ, पृथ्वी ने कहा और वहां से जाने लगा। पृथ्वी के जाते ही अभिमन्यु इशिका के सामने वाले चेयर पर बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ जो तुम्हें मेरे पीछे राजवंश एम्पायर दौड़कर आना पड़ा। जहां तक मुझे याद है, मिसेस सिंघानिया तुमसे कुछ बात करने वाली थी, इशिका ने जवाब में कहा। हाँ, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। सुबह मिस्टर सिंघानिया का मैसेज आया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने आदर्श सिंघानिया के घर को खरीद लिया है, इसलिए आज रात हम दोनों को डिनर के लिए बुला रहे थे। फिर माँ ने बताया कि मिस्टर सिंघानिया, बोलते हुए इशिका रुक गई। वो एक पल के लिए झिझकी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। उसने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मिस्टर सिंघानिया ही मेरे डैड हैं, मेरे बायोलॉजिकल फादर। बस इतनी सी बात, अभिमन्यु बेपरवाही से बोला। उसे इतना रिलैक्स देखकर इशिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो उसे घूरते हुए बोली, ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? हाँ, क्योंकि तुम्हारी डियर डैड ने मेरे ऊपर जो ब्लास्ट किया है उसके आगे इतनी सी ही बात है, अभिमन्यु ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा। अभिमन्यु ने टेबल पर रखे पेपर्स उठाए और इशिका के सामने कर दिए। उन्हें पढ़कर इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा। मिस्टर सिंघानिया ने जो भी किया था उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इशिका ने ना में सिर हिलाया और कहा, मिस्टर सिंघानिया ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो पागलपन है। मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, कोई गुलाम नहीं जो वो अपने फैसले मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा भी कैसे सकते हैं, वो तो तुम्हें पसंद करते हैं। एक बार मुझे अरमान ने बताया भी था कि मिस्टर सिंघानिया यही चाहते थे कि अगर उनकी कोई बेटी होती तो वो तुम्हारी शादी उनके साथ करवा देते। वो पुरानी बातें हैं इशिका, वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते थे। जब मैं इंडिया आया था तब उन्होंने अपनी अडॉप्टेड डॉटर के साथ मेरे सामने शादी करने की शर्त रखी थी। मैंने इनकार कर दिया तो वो काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर गलती से भी मैंने उनकी बेटी से शादी की तो वो खुद उसका मेरे साथ तलाक करवा देंगे। मुझे नहीं पता था कि एक छोटी सी बहस को इतना सीरियसली ले लेंगे। अभिमन्यु ने इशिका को सब कुछ बता दिया। वो सच में बहुत अजीब है, तभी मुझे डर लगता है कि वो मुझे माँ से अलग कर देंगे, इशिका ने परेशान स्वर में कहा। इशिका जहाँ परेशान थी वहीं अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोला, अजीब है लेकिन दिल के अच्छे हैं और यकीन मानो वो मिसेस सिंघानिया से बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं उन्हें मना लूंगा। तो क्या आज रात हमें डिनर पर जाना चाहिए, इशिका ने पूछा। बेशक जाना चाहिए और हम जाएंगे भी जरूर। अगर हम वहां नहीं गए तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी और साथ ही मिस्टर सिंघानिया का गुस्सा भी। उनका हक है अपनी बेटी से मिलने का, वो इतने सालों से तुम्हारे लिए तड़प रहे होंगे, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो मिस्टर सिंघानिया के इमोशन समझ सकता था, खासकर तब जब वो खुद भी अब बाप बनने वाला था। इशिका ने उसकी बात पर सिर हिलाया और शांत लहजे में कहा, उन्हें तो पता तक नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है। उम्मीद है मिस्टर सिंघानिया आप कोई और शर्त ना रखें और हमारी बात को समझें। वो नहीं भी समझेंगे तब भी उन्हें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है। चलो परेशान होना बंद करो, तुमने प्रॉमिस किया था कि एक वीक मेरे साथ स्पेंड करने वाली हो, अब ऑफिस में आ ही गई हो तो बताओ क्या करना चाहती हो, अभिमन्यु ने इशिका का ध्यान भटकाने के लिए पूछा। इशिका के चेहरे की परेशानी उसकी आंखों से छुपी हुई नहीं थी। इशिका उसके इंटेंशन को समझते हुए बोली, तुम मेरा दिल बहलाने की कितनी भी कोशिश कर लो पर मेरा ध्यान इसी तरफ ही जा रहा है। मेरी किस्मत कितनी अजीब है अभिमन्यु, मैंने अपनी अब तक की जिंदगी अपनी माँ के बिना बिताई, ये तक नहीं पता था कि मेरी माँ कौन है। फिर अचानक एक दिन पता चला कि आदर्श सिंघानिया मेरे डैड नहीं है, उल्टा वो तो वो इंसान है जो हमेशा मुझे तकलीफ देना चाहता था। अचानक से कोई शख्स उठकर आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। मैं तुम्हारी कशमकश समझ सकता हूँ, चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। पहले मुझे लगता था हम दोनों की किस्मत एक जैसी है, मालविका तुम्हारी माँ होकर भी तुम्हें नीचे गिराने पर तुली रहती थी और मेरी माँ ने तो मुझे वक्त से पहले पैदा किया ताकि वो डैड को छोड़कर जा सके। उन्होंने मुझे पैदा किया और चली भी गई। मेरे डैड इन सबका जिम्मेदार मुझे मानते हैं और अब तक मुझसे नफरत करते हैं।
लेकिन तुम अलग हो इशिका। मिस्टर सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया दोनों ही तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए वो सब कुछ भूल जाएंगे, अभिमन्यु ने इशिका को समझाते हुए कहा। उसके समझाने पर इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। अभिमन्यु ने उसे अपने करीब करके अपनी गोद में बिठा लिया था। अभिमन्यु के पास आते ही इशिका ने उसके कंधे पर सिर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। यही वो जगह थी जो उसे सुकून देती थी। इशिका ने बंद आंखों से बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम पर प्राउड है, तुम कितने समझदार हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, लेकिन न जाने आजकल मुझे क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, अभिमन्यु ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। हाँ, माँ ने बताया था कि वो भी अपनी प्रेगनेंसी में इसी तरह स्ट्रेस लेती थी। आई होप ये पीरियड जल्दी से कम्प्लीट हो जाए और हमारा बच्चा हमारे हाथ में हो, ताकि मेरे मूड स्विंग्स बंद हों, इशिका ने जवाब दिया। अभिमन्यु के पास आते ही इशिका की परेशानी खुद ब खुद दूर हो गई थी, तो वहीं अभिमन्यु उन डाइवोर्स पेपर्स को सीरियसली नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ केशव सिंघानिया आदर्श के घर में कुछ जरूरी बदलाव करवा रहे थे। उनके साथ अरमान भी था। चाचू, मैं तो पहले ही कहा था कि इशिका हमारी ही फैमिली का हिस्सा है। मेरा दिल कहता था वो आप ही की बेटी है, लेकिन आपको तो इल्जाम मेरे डैड और बड़े चाचू पर लगाना था, अरमान ने खुश होकर कहा। वो भी केशव के साथ गोवा आ गया था। जब से उसे इशिका के अपनी बहन होने के बारे में पता चला था, वो और भी ज्यादा खुश था। हाँ, काश मैंने पहले तुम्हारी बात मानकर डीएनए करवा लिया होता, तो इतने दिनों तक उससे दूर नहीं रहना होता। इसे छोड़ो और ये बताओ कि उसे खाने में क्या पसंद होगा, केशव ने एक्साइटेड होकर पूछा। मुझे कैसे पता होगा, मैं उसे पहले से थोड़ी ना जानता हूँ। आप इस जगह का इंटीरियर बाद में भी चेंज करवा सकते थे, जल्दबाजी में ये सब करवाने की क्या जरूरत थी। वैसे भी ये जगह उसके लिए नई नहीं है, अरमान ने उन्हें घूमते हुए कहा। केशव ने घर खरीदते ही घर का इंटीरियर और बाकी जरूरी चीजों में बदलाव करवाना शुरू कर दिए थे। वो नहीं चाहता था कि सिंघानिया मेंशन अब आदर्श सिंघानिया के हिसाब से रहे।
मैं चाहता हूँ कि ये जगह उसके लिए नहीं हो। इतना टाइम नहीं है कि इसे पूरी तरह डिमोलिश करवाकर पूरा नया कर सकूं, लेकिन जितने बदलाव हो सकते हैं वो जरूर करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वो इस जगह को देखकर अपने पुराने जख्मों को याद करे। वैसे भी इस घर से उसकी कोई अच्छी यादें नहीं जुड़ी हुई हैं, केशव ने सख्त आवाज में कहा। इतना कहकर वो टीम को इंस्ट्रक्शन देने को जाने लगे। अरमान उन्हें रोकना चाहता था, पर केशव जल्दी से निकल गए। उनके जाते ही अरमान ने धीरे से कहा, बेटी के मिलने के बाद चाचू कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए हैं। ऐसे में उन्हें मिसेस सिंघानिया का भी ख्याल नहीं रहा। इतने साल उन्होंने इशिका को अकेले पाला था, उन्हें मिसेस सिंघानिया से भी बात करनी चाहिए, पर इन्हें तो उनकी फिक्र भी नहीं है। अरमान यही चाहता था कि केशव और राधिका भी एक बार फिर मिल जाएं, क्योंकि अब आदर्श इस दुनिया में नहीं रहा था, ना ही कोई और शख्स जो उनकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करे। अरमान ने एक नज़र केशव की तरफ देखा तो वो कामों में लगे हुए थे। उसने मन ही मन कहा, लगता है ये काम भी मुझे ही करना होगा। केशव के गुस्से की परवाह किए बिना अरमान ने अपना मोबाइल निकाला और राधिका को मैसेज करके उसे आज रात के डिनर के लिए इनवाइट कर दिया था। दूसरी तरफ राधिका को मैसेज मिला तो वो थोड़ा हैरान जरूर हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, मैंने ही केशव से न मिलने को कहा था, लेकिन ऐसे हालातों में अगर मैं उससे नहीं मिलने गई तो गलत फहमियां और बढ़ जाएंगी। मुझे आज इस डिनर के लिए जाना ही होगा। राधिका ने वहां जाने का फैसला किया। वहीं केशव ने राधिका को इसीलिए नहीं बुलाया था क्योंकि वो उससे नाराज थे। राधिका चाहती तो पहले ही इस बारे में उन्हें बता सकती थी। वो जानबूझकर राधिका का जिक्र तक नहीं कर रहे थे। इशिका के जरिए वो अपने गम को भुलाना चाहते थे। जल्द ही वो शाम भी आ गई जिसके लिए उन्होंने इतनी तैयारी की थी। इशिका और अभिमन्यु ऑफिस से ही तैयार होकर सिंघानिया मेंशन जाने के लिए निकल गए, तो वहीं राधिका राजवंश विला से आज फिर सिंघानिया मेंशन जाने वाली थी। कैसा होगा फैमिली रियूनियन, ये तो अगले चैप्टर में पता चल जाएगा। चलिए पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।